प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 10 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के अपने लाइफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पर आप सबसे बातचीत करना शुरू करूं, मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं और यह सूचना मुझे देनी जरूरी लगी। मुझे किसी ने बताया और यह सुनकर सच में मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत से स्टूडेंट यह मान करके चलते हैं कि मैं सिर्फ लाइफ मैनेजमेंट पर ही बात करता हूं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में तो कुछ बताता ही नहीं। शायद उनके मन में यह जो आशंका है या यह जो बात आई है इस वजह से आई है क्योंकि वे सिर्फ मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को ही सुनते हैं, जबकि इससे भी बड़ा भाग रोजाना मेरे न्यूज एनालिसिस का होता है, जिसे डेली ऑडियो लेक्चर के नाम से प्रोवाइड किया जाता है, जो लगभग 20 मिनट का तो होता ही है। और जो लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपने देखा होगा 12-13 मिनट का मैं रखता हूं। तो मित्रों, सूचना यह है कि प्लीज आप में से जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति करेंट अफेयर्स से जुड़े रहना चाहता है, उनकी अपनी एनालिटिकल पावर डेवलप करना चाहता है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है, तो उनके लिए डेली ऑडियो लेक्चर भी उपलब्ध होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से डेली लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल होता है। शुरुआत जब मैंने इसकी की थी तो ये दोनों बिल्कुल एक ही साथ चलते थे, बिल्कुल एक खत्म होता था और वो इसके बाद तुरंत दूसरा शुरू हो जाता था, दोनों को अलग अलग नहीं अवेलेबल कराया जाता था। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने स्टूडेंट की सुविधा का ध्यान रखते हुए और जब ये बात सुनने को मिली कि कुछ घर के सदस्य, बड़े बुजुर्ग या दूसरे प्रोफेशन के व्यक्ति भी लाइफ मैनेजमेंट को सुनते हैं और उनका न्यूज एनालिसिस से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए मित्रों अब हम लोग इसे अलग अलग दो भागों में विभाजित करके डालना शुरू किया है, अवेलेबल कराना शुरू किया है। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी जरूरत है तो डेली जिस तरीके से लाइफ मैनेजमेंट आता है, ठीक उसी तरह से डेली ऑडियो लेक्चर भी आता है, जिसमें AIR न्यूज और न्यूज़पेपर को बेस बनाकर उसकी एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है और साथ ही कोशिश होती है कि आपकी कैपेसिटी इस तरह से डेवलप की जाए कि आप जान सकें कि अखबार में कौन सी चीजें ज्यादा आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक इसी तरह से न्यूज की कौन सी बातें आपको ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए, और फिर नेट पर जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स और जो दूसरी चीजें हैं वो सब तो प्रोवाइड की ही जाती हैं, जो आप afis.com पर जब जाएंगे तो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मित्रों, जब मुझे ये बात किसी ने बताई तो सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर किसी के मन में ये शक है तो उनको शक करने का अपना अधिकार है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई वजह हो, तो मुझे लगा कि इसकी मुझे विधिवत सूचना आप सबको दे देनी चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर और आज के लिए मैंने जो सब्जेक्ट चुना है, दोस्तों कल मैंने ओम पुरी जी पर कुछ बातें आप लोगों से की थी, फिर मुझे ध्यान आया कि ठीक है, हम ओम पुरी जी पर तो हमने बातें की, हम में से कितने लोग ओम पुरी जी से मिले होंगे, जो कुछ भी हम उन्हें जानते हैं, अखबार के थ्रू जानते हैं, मैगजीन्स के थ्रू जानते हैं या जो चैनल्स ने अभी बताया है उसके थ्रू जानते हैं, फिल्म के जरिए हमारा उनसे परिचय है, लेकिन हमारे आसपास हमारे बीच में ही ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ठीक है उतने ऊंचे कद के नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो प्रेरणा के कारण बन सकते हैं या हमारे लिए वो उदाहरण पेश कर सकते हैं, हमें उनकी भी बात करनी चाहिए अगर कुछ किसी में दिखाई देता है तो। दोस्तों, सच बात तो यह है कि सीखा तो किसी से भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सच यह है कि अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो ओम पुरी जी ही क्या, मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी सामने क्यों ना खड़ी कर दी जाए, उससे भी सीखने से इनकार किया जा सकता है। जैसे शिकायत करने वाले, एक किसी फिलॉसफर ने कहा है कि शिकायत करने वाले तो इस बात की भी शिकायत करते देखे गए हैं कि कौन कहता है कि सूरज में इतनी गर्मी होती है, इतनी ऊर्जा होती है, वो एक सिगरेट तो जला नहीं सकता। तो अब शिकायत करने वाले तो कुछ भी करते हैं मित्रों, अदरवाइज सीखने वाले तो किसी से भी सीख सकते हैं। तो आइए मैं अब थोड़े से कुछ ऐसे ही पात्रों की बात करता हूं, और मुझे आज बेहद खुशी है कि मैंने जिस पात्र को चुना है दोस्तों, वो आप सब में से ही एक है, और यह पात्र है हमारी जो क्लासेज लगती हैं उसके फर्स्ट बैच की स्टूडेंट। मित्रों मुझे वो स्टूडेंट याद आ रहा है जो बिल्कुल पहली ही लाइन में वो बैठा करती थी, और जैसे ही क्लास खत्म होती थी वो लड़की, वो स्टूडेंट भाग कर स्टेज पर मेरे पास आती थी। उसके हाथ में एक कॉपी होती थी और वो कॉपी दिखाती थी कि सर मैंने ये आंसर लिखा है, आप इस आंसर को बताइए कि ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं आंसर देखता था और कहता था कि नहीं ठीक नहीं है, ठीक है। वो दूसरे दिन फिर आती थी और फिर वो उसी बात को दोहराती थी, फिर मैं कहता था कि नहीं ठीक नहीं है। तीसरे दिन आती थी, फिर वो दिखाती थी, मैं कहता कि नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर क्यों ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है, मैंने उसे ये बताना शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि मैं उसके उत्तरों को रिजेक्ट करता रहा और उस रिजेक्शन के प्रोसेस में वो इम्प्रूव भी करती रही। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही चीजों को दोहरा रही थी, वो इम्प्रूव भी कर रही थी। आज की तुलना में कल के उत्तर बेहतर थे, कल की तुलना में परसों के उत्तर बेहतर थे, और शायद 11वें 12वें 13वें दिन तक जाते जाते मैंने कहा था कि हाँ अब तुम काफी कुछ ठीक उत्तर लिखने लगी हो। मित्रों अभी मैं बताऊंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों इसके बाद मुझे जो उस स्टूडेंट से जुड़ी हुई जो एक बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत ही इमोशनल जो घटना याद आ रही है, वो है कि आखिरी दिन था जब सब विदाई ले रहे थे, 15वें दिन क्लास खत्म हो रही थी। इसके बाद वो लड़की मेरे पास आई और आते साथ ही उसने एक बहुत ही ऐसी बात कही जो जिसने मुझे सोचने को विवश कर दिया और मुझे अपनी मजबूरी पर तरस आए, अपनी मजबूरी पर तरस आए। उसने बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे हैं, कुछ समय पहले ही उनके पिता नहीं रहे, और इसके बाद उसने मुझे बड़ा एक बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन किया। आप शायद उस क्वेश्चन को आप सुनकर सामान्य सा समझे, लेकिन उस क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया था, और वो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि सर क्या मेरे पिता वापस नहीं आ सकते, ये प्रश्न था। आप बताइए कि मैं इसका क्या उत्तर देता, सिवाय इसके कि देखो दूसरा कुछ भी हो सकता है इस धरती पर, लेकिन अब तुम्हारे पिता वापस नहीं आ सकते। तुम अब ये मानो कि तुम्हारे पिता गए नहीं हैं, वो तुम्हारी स्मृतियों में हैं, और तुम्हारे पिता तुम्हें इस रूप में एक सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाहते थे, तो तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी अपने पिता के प्रति कि तुम सिविल सर्वेंट बनकर दिखाओ। और मित्रों उस दिन रात में घर लौटकर मैं भी बहुत रोया था। रोया मैं इसलिए था कि देखो क्या बेबसी है, वो लड़की ग्रेजुएट है, सब कुछ जानती है, लेकिन अपने पिता से कितने गहरे रूप से जुड़ी हुई है कि वो पूछ रही है कि क्या वो वापस नहीं आ सकते, जानती है कि वापस नहीं आ सकते, उसको मालूम है कि उत्तर क्या है, उसको अपनी एक तरह से प्रश्न की अगर क्वालिटी की कहे तो उसको अपनी मूर्खता का भी एहसास होगा, लेकिन उसका इनोसेंटनेस देखिए, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं रोया इसलिए भी था मित्रों क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा था, उस समय तो मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिता नहीं रहे थे, और घर वाले जब मुझे बताते थे कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, वो कहीं बाहर गए हैं, तो मैं उन पर यकीन करता था कि हाँ वो वापस आएंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहता था, तो शायद वह भावना भी जुड़ गई होगी, तो मैं उस दिन फूट फूट कर रोया था। मित्रों अभी ये तो मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई, और मुझे खुशी की बात ये लगी कि जब नए साल पर उसकी मुझे शुभकामनाएं मिली, और इससे पहले भी मेरी बात होती रही, और उसने जब राजस्थान सिविल सर्विस क्वालिफाई किया और उसमें जब उसको जो उसकी टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर की जब पोस्ट मिली, तो उसने आशीर्वाद के लिए मुझे फोन किया, और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा कि तुमने सही मायने में अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। और मित्रों जब न्यू ईयर पर उसकी शुभकामनाएं मिली तो फिर मैंने उसको फोन किया शुभकामनाएं देने के लिए। उससे बात हुई और बात होने के बाद उसने बताया कि सर अब ट्रेनिंग पूरी हो गई है और 9 जनवरी को अब उसकी पोस्टिंग होने वाली है, तो कल उसकी पोस्टिंग हो गई होगी। और मित्रों मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो कहती रही कि सर मैं सोचती थी कि मैं आपसे फोन करूं लेकिन हिचक जाती थी और जो कुछ भी चलिए बातें हुई, लेकिन यहां मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं मित्रों, वो शेयर जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये कि मुझे उसकी बात में क्या मेरे पिता वापस नहीं आ सकते वाली सरलता 2 साल बाद भी महसूस हुई। यानी कि एक सिविल सर्वेंट बन जाने के बाद उसने फिर बताया कि वो यहां SDM भी रही और वहां ये इस पद पर भी रही। मुझे सबसे अच्छी बात लगी जिसकी वजह से मैं आज उसकी चर्चा कर रहा हूं वो ये कि उसके अंदर मुझे ईगो दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं पकड़ने में कितना सही रहा हूं, इस बात को कितने सही तरीके से आपके सामने पेश कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत भी नहीं होऊंगा। मुझे जो बेहद खुशी हुई कि अभी भी मुझे उसके अंदर वही सरलता वही सहजता दिखाई दी और ईगो नाम की चीज मैं ढूंढता रह गया। मैंने कहा कि अभी अफसर बन गई है, 2 साल हो गए हैं, ट्रेनिंग का काम ही है आदमी को अफसर बनाना, तो शायद कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत गर्व है भावना तुम पर कि तुमने मुझे गलत नहीं ठहराया और तुमने अपनी सरलता और सहजता को उसी तरह से बनाए रखा। आवाज से वो बहुत खुश लगी, वही सरलता वही सहजता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैंने सीखने की बात कही, अब आप उसे जोड़कर देखिए। शुरू में मैंने जैसे कहा कि वो पहली लाइन में बैठती थी ताकि क्लास खत्म होते ही वो भागकर सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाए। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, जब क्लास खत्म होती है तो मैं ये व्यवस्था करता हूं कि सभी स्टूडेंट मुझसे आकर के बारी बारी से मिले, तो फिर मैं स्टेज पर ही रहता हूं और अपने स्टूडेंट से मिलता हूं, उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूं, उनके प्रश्नों के जवाब देता हूं, उनको उत्सुकताओं को शांत करता हूं। ये मेरा एक एक्सक्लूसिव काम होता है जो मैं क्लास के दौरान करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो मुझसे आकर के पूछती थी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे रिजेक्शन के बाद वो अपने करेक्शन में आती थी। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। देखिए सवाल मुझको सुनने से नहीं है, सवाल मुझसे पूछने से भी नहीं है, और सवाल इसका भी इससे भी नहीं है कि मैं बताता कितना हूं और क्या हूं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो बताया जा रहा है उसे हम अपने जीवन में उतार कितना पा रहे हैं। और ये केवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये जीवन के हमारे सभी क्षेत्रों के लिए है। क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो आएंगे ही तभी जब हम जो भी विचार हमने सुने हैं हमने पढ़े हैं हमारे दिमाग में आए हैं जब वो कार्य रूप में परिणित हो, जब वो इंप्लीमेंट हो। और मित्रों जब वो इंप्लीमेंट होते हैं तब सफलता कोई बहुत बड़ी दूर की कौड़ी नहीं होती है, कोई आसमान में खिला हुआ फूल नहीं होता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो तो आपकी मुट्ठी में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सुनते तो बहुत हैं पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उसका सौवां हिस्सा भी अपने अंदर कर नहीं पाते, उतार नहीं पाते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। तो मित्रों ये मेरे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रही हैं उनका नाम है भावना शर्मा जो जयपुर की रहने वाली हैं, जिनकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। और चूंकि कल उन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली होगी एक ऑफिसर के रूप में, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस रूप में अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी होगी, तो मैं आप सबकी ओर से अपनी अकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी माताजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सभी को बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।